प्रभात का समय था। चैत का सुखद पवन प्रवाहित हो रहा था। बाबू ज्वाला सिंह बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए घोड़े का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आज मौका देखने के लिए लखनपुर जाना था, किंतु इस मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई थी। कल संध्या समय शीलमणि ने उनसे ज्ञानशंकर के मुकदमे की बात कही थी और तभी से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। सामने एक जटिल समस्या थी, न्याय का प्रणय, कर्तव्य या ईश्वरी की मान रक्षा। वह सोचते थे उससे बड़ी भूल हुई कि इस मुकदमे को अपने इजलास में रखा, लेकिन मैं क्या जानता था कि ज्ञान शंकर इस कूटनीति ग्रहण करेंगे। वो बड़ा स्वार्थी मनुष्य है। इसी अभिप्राय से उसने स्त्रियों में यह मेल जोल बढ़ाया। शीलमणि यह चालें क्या जाने, शील में पढ़कर वचन दे गई। अब यदि उसकी बात नहीं रखी तो वह रो रो कर जान दे देगी। उसे क्या मालूम कि इस अन्याय से मेरी आत्मा को कितना दुख होगा। अभी तक कितनी गवाहियां सामने आई हैं, उनमें तो यही सिद्ध होता है ज्ञान शंकर ने आसामियों को दबाने के लिए मुकदमा दायर किया है और कदाचित बात भी यही है। वह बड़ा ही बना हुआ आदमी है, लेख तो ऐसा लिखता है मानो दीन रक्षा के भावों से पका हुआ है, किंतु पक्का मतलब भी है। गायत्री की रियासत का मैनेजर हो जाएगा तो अंधेर मचा देगा, नहीं मुझसे याद अयाय न हो सकेगा। देखकर मक्खी न निकली जाएगी। शीलमणि रूठेगी तो रूठे, उसे स्वयं समझना चाहिए था कि मुझे ऐसा वचन देने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह केवल रो कर ही मेरा पिंड न छोड़ेगी, बात बात पर ताने देगी, कदाचित मैके की तैयारी भी करने लगे। यही उसकी बुरी आदत है, या तो प्रेम और मृदुलता की देवी बन जाएगी या बिगड़ेगी तो भालों से छेदने लगेगी। ज्ञान शंकर ने मुझे ऐसे संकट में डाल रखा है कि उससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता। ज्वाला सिंह इसी हैस बहस में पड़े हुए थे कि अचानक ज्ञान शंकर सामने बैलगाड़ी पर आते दिखाई दिए। ज्वाला सिंह तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और साइस को जोर से पुकारा कि घोड़ा ला। साइस घोड़े को कसे हुए तैयार खड़ा था, यह पाते ही घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। ज्वाला सिंह उस पर कूद कर सवार हो गए। ज्ञान शंकर ने समीप आकर कहा, कहिए भाई साहब, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले। ज्वाला, जरा लखनपुर जा रहा हूँ, मौका देखना है। ज्ञान, धूप हो जाएगी। ज्वाला, कोई परवाह नहीं। ज्ञान, मैं भी साथ चलूंगा। ज्वाला, मुझे रास्ता मालूम है। यह कहते हुए उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और हवा हो गए। ज्ञान शंकर समझ गए कि मेरा मंत्र अपना काम कर रहा है, यह कृपा इसी का लक्षण है। ऐसा ना होता तो आज भी वही मीठी मीठी बातें होती। चलो जरा शीलमणि को और पक्का कराऊं। यह इरादा करके वह ज्वाला सिंह के कमरे में जा बैठे। अर्दली ने कहा, सरकार बाहर गए हैं। ज्ञान, मैं जानता हूँ, मुझसे मुलाकात हो गई, जरा घर में मेरी इतला कर दो। अर्दली, जाकर सरकार का हुक्म नहीं है। ज्ञान, मुझे तो पहचानते हो या नहीं। अर्दली, पहचानता क्यों नहीं हूँ। ज्ञान, चौखट पर जाकर कहते क्यों नहीं। अर्दली, सरकार ने मना कर दिया है। ज्ञान शंकर को अब विश्वास हो गया कि मेरी चाल ठीक पड़ी। ज्वाला सिंह ने अपने को पक्षपात रहित सिद्ध करने के लिए ही षड्यंत्र रचा है। यह सोच ही रहे थे कि शीलमणि से क्यों कर मिलूं, कितने में महरी किसी काम से बाहर आए और ज्ञान शंकर को देखते ही जाकर शीलमणि से कहा। शीलमणि ने तुरंत उसके लिए पान भेजा और दीवान खाने में बैठाया। एक क्षण के लिए बाद वह खुद आकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई और महरी से कहलाया, मैंने बाबू जी से आपकी सिफारिश कर दी है। ज्ञान शंकर ने धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अब आप ही का भरोसा है। शीलमणि बोली, आप घबराइए नहीं, मैं उन्हें एकदम चैन न लेने दूंगी। ज्ञान शंकर ने ज्यादा ठहरना उचित न समझा, खुशी खुशी विदा हुए। उधर ज्वाला बाबू ज्वाला सिंह ने घोड़ा तोड़ा तो चार मील पर रुके। उन्हें एक सिगार पीने की इच्छा हुई। जब से सिगार कैसे निकाला, लेकिन देखा तो दिया सलाई न थी। उन्हें सिगार से बड़ा प्रेम था, अब क्या हो। इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने कुछ दूरी पर एक बहती बहली जाती हुई दिखाई थी। घोड़े को पढ़कर बहली के पास पहुंचे तो उस पर प्रेम शंकर बैठे हुए थे। ज्वाला सिंह का उनसे परिचय था, कई बार उनकी कृषिशाला के सैर करने गए थे और उनके सरल संतोषमय जीवन का आनंद करते थे। पूछा, कहिए महाशय, आप इधर कहाँ चले। प्रेम, जरा लखनपुर जा रहा हूँ, और आप। मैं भी तो वहीं चलता हूँ। प्रेम, अच्छा साथ हुआ, क्या कोई मुकदमा है। ज्वाला सिंह ने सिगार जलाकर मुकदमे का वृत्तांत कह सुनाया। प्रेम शंकर गौर से सुनते रहे, फिर बोले, आपने उन्हें समझाया नहीं कि गरीबों को क्यों तंग करते हो। ज्वाला, मैं इस विषय में उनसे क्यों कर कुछ कहता। हाँ, स्त्रियों में जो बातें हुई उनसे मालूम होता है कि वह अपनी ज़रूरतों से मजबूर है, उनका खर्च नहीं चलता। प्रेम, 2000 साल की आमदनी 3-4 प्राणियों के लिए तो कम नहीं होती। ज्वाला, लेकिन इसमें आधा तो आपका है। प्रेम, जी हाँ, मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मैं इस जायदाद से हिस्सा नहीं लेना चाहता। ज्वाला सिंह आश्चर्य से, क्या आपने उनके नाम हिब्बा कर दिया। प्रेम, जी नहीं, लेकिन हिब्बा ही समझिए। मेरा सिद्धांत है कि मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए, यही प्राकृतिक नियम है। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनाए। ज्वाला तो यह कहिए कि आप जमींदारी के पेशे को ही बुरा समझते हैं। प्रेम, हाँ मैं इसका भक्त नहीं हूँ। भूमि उसकी है जो उसे जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए नहीं कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है। उस जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती, किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है। ज्वाला, महाशय इन विचारों से तो आप देश में क्रांति मचा देंगे। आपके सिद्धांत के अनुसार बड़े बड़े जमींदारों और तालुकेदारों और रईसों का समाज में कोई स्थान ही नहीं, सबके सब डाकू हैं। प्रेम, इसमें इनका कोई दोष नहीं, प्रथा का दोष है। इस प्रथा के कारण देश की कितनी आत्मिक और नैतिक अवनति हो रही है इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमारे समाज का वह भाग जो बल बुद्धि विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के वश आलस्य विलास और अविचार के बंधनों से जकड़ा हुआ है। ज्वाला सिंह, कहीं आप इन्हीं बातों का प्रचार करने तो लखनपुर नहीं जा रहे हैं कि मुझे पुलिस की सहायता मांगनी पड़े। प्रेम, हाँ शांति भंग करने का अपराध मुझ पर लगाना हो तो जरूर पुलिस की सहायता लीजिए। ज्वाला सिंह, मुझे अब आप पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। मैं भी छोटा मोटा जमींदार हूँ, आपसे डरना चाहिए। इस समय लखनपुर ही जाइएगा या आगे जाने का इरादा है? प्रेम, इरादा तो यहीं से लौट जाने का है, आगे जैसी जरूरत हो। इधर आसपास के देहातों में 1 महीने से प्लेग का प्रकोप हो रहा है, कुछ दवाएं साथ लेता आया हूँ, जरूरत होगी तो उसे बांट दूंगा। कौन जाने मेरे ही हाथों दो चार जाने बच्चे हैं। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों आदमी लखनपुर पहुंचे। गांव खाली पड़ा था, लोग बागों में झोपड़ियां डाले हुए थे। इस छोटी सी बस्ती में खूब चहल पहल थी। उन दारुण दुखों का चिन्ह कहीं दिखाई देता था जिनसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। छप्परों के सामने महुए सुखाए जा रहे थे। चक्कियों की गरज, छाछ की तड़प, ओखली और मूसल की धमक इस जीवन संग्राम की सूचना दे रही थी जो प्लेग के भीषण हत्याकांड की भी परवाह न करता था। लड़कियां आमों पर ठेले चला रहे थे, कोई स्त्री बर्तन मांजती थी, कोई उपले पाटती थी, कोई पड़ोसी घर से आग लिए जाती थी, कोई आदमी निठल्ला बैठा नजर न आता था। प्रेम शंकर तो बस्ती में आते ही बहाली से उतर पड़े और एक झोपड़ी के सामने खाट पर बैठ गए। ज्वाला सिंह घोड़े से न उतरे, खाट पर बैठना अपमान की बात थी। जोर से बोले, कहाँ है मुखिया? जाकर पटवारी को बुला लाए, हम मौका देखना चाहते हैं। यह हुक्म सुनते ही आदमी झोपड़ों से मरीजों को छोड़ छाड़ कर निकल आए। चारों ओर भगदड़ सी मच गई। दो तीन आदमी चौपाल की तरफ कुर्सी लेने दौड़े, दो तीन आदमी पटवारी की तलाश में भागे और गांव के मान्यगण ज्वाला सिंह को घेर कर खड़े हो गए। प्रेम शंकर की ओर किसी ने ध्यान भी न दिया। इतने में कादिर खां अपनी झोपड़ी से निकले और सुक्खू के कान में कुछ कहा। सुक्खू ने दुखरन भगत से कानाफूसी की, तब भी शेषर शाह से साए साए बातें हुई, मानव लोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद सुक्खू चौधरी एक थाल लिए हुए आए, उसमें अक्षत दही और कुछ रुपए रखे हुए थे। गांव के पुरोहित जी ने प्रेम शंकर के माथे पर दही चावल का टीका लगाया और थाल उनके सामने रख दी। ज्वाला सिंह कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लीजिए, आपकी तो बोहनी हो गई। घाटे में हम ही रहे, पर उस पर भी आप जिम्मेदारी के पेशे की निंदा करते हैं। प्रेम शंकर ने कहा, देवी के नाम से एक पत्थर भी तो पूजे जाते हैं। कादिर खां, हम लोगों के धन भाग थे कि दोनों मालिकों के एक साथ दर्शन हो गए। प्रेम, यहाँ बीमारी कुछ कम हुई या अभी वही हाल है? कादिर, सरकार कुछ न पूछिए, कम तो न हुई और बढ़ती जाती है। कोई दिन नागा नहीं जाता कि एक एक न घर पर बिजली न गिरती हो। नदी यहाँ से 6 कोस है, कभी कभी तो दिन में दो दो तीन तीन बेर जाना पड़ता है। उस पर कभी आंधी, कभी पानी, कभी आग। खेतों में अनाज सड़ जाता है, कैसे काटे कहाँ रखें। बस भोर को घरों में एक बेर चूल्हा जलता है, दिन भर कहीं आग नहीं जलती। चीलम को तरस जा रहे हैं मजूर, रोते नहीं बनता, बड़ी दुर्दशा हो रही है। उस पर मालिकों की निगाह भी टेढ़ी हो गई है, 100 काम छोड़कर कचहरी दौड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घर में लाश छोड़कर जाना पड़ता है। क्या करें, जो सिर पर पड़ी है उसे झेलते हैं। हजूर का एक गुलाम था, अच्छा पट्टा था, सारे गृहस्थी संभाले हुए था। 3 घड़ी में चल बसा, मुंह से बोल तक नहीं निकली। सुक्खू चौधरी का तो घर ही सत्यानाश हो गया, बस अब अकेले इन्हीं का दम रह गया है। बेचारे डप्पट सिंह का छोटा लड़का कल मरा है, आज बड़ा लड़का बीमार है, अल्लाह उसे बचाए तो बचे। जुबान बंद हो गई, लाल लाल आंखें निकाले खाट पर पड़ा हाथ पर पटक रहा है। कहाँ तक गिनाए, खुदा रसूल देवी देवता सभी की मन्नतें मानते हैं पर कोई नहीं सुनता। अब तक तो जैसे बन पड़ा मुकदमे की गुजरदारी की, अब वह हिम्मत भी नहीं रही। किसके लिए यह सब करें, इतने पर भी मालिकों को दया नहीं आती। प्रेम शंकर, जरा मैं डप्पट सिंह के लड़के को देखना चाहता हूँ। कादिर, हाँ हजूर चलिए मैं चलता हूँ। ज्वाला सिंह, जरा सावधान रहिएगा, यह रोग संक्रामक होता है। प्रेम शंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया, औषधियों का बेग उठाया और कादिर खां के पीछे पीछे चले। डप्पट सिंह के झोंकड़े पर पहुंचे तो आदमियों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक आम के पेड़ के नीचे रोगी की खाट पड़ी हुई थी। डप्पट सिंह और उनके छोटे भाई झपट सिंह सिरहाने पंखे जले खड़े झल रहे थे। दो स्त्रियां पायते की ओर खड़ी रो रही थी। प्रेम शंकर को देखते ही दोनों अंदर चली गई। दोनों भाइयों ने उनकी ओर दीन भाव से देखा और अलग हट गए। उन्होंने उष्णता मापक यंत्र से देखा तो रोगी का ज्वर 107 दर्जे पर था। त्रिदोष के लक्षण प्रकट थे, समझ गए कि यह अब दम भर का मेहमान है। अभी वह बेग से औषधि निकाल ही रहे थे कि मरीज एक बार जोर से चीख मारकर उठा और फिर खाट पर गिर पड़ा। आंखें पथरा गई, स्त्रियों में पिटस पड़ गई। टपट सिंह शोकातुर होकर मृत शरीर से लिपट गया और रोकर बोला, बेटा हाय बेटा। यह कहते कहते उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गई, उन्मास अच्छा गया। गीली लकड़ी पहली आँच में रसती है, दूसरी आँच में जलकर भस्म हो जाती है। टपट सिंह शोक संताप से बेबल हो गया, खड़ा होकर बोला, कोई इस घर में आग क्यों नहीं लगा देता? अब इसमें क्या रखा है? कैसी दिल लगी है? बाप बैठा रहे और बेटा चल दे। इन्हीं हाथों से मैंने इसे गोद में खिलाया था, इन्हीं हाथों से चिता की गोद में कैसे बिठा दूं? कैसे रुलाकर चल दिया मानो हमसे कोई नाता ही नहीं। कहता था, दादा तुम बूढ़े हुए, अब बैठे बैठे राम राम करो, हम तुम्हारी परवस्ती करें। मगर दोनों के दोनों चल दिए, किसी को कुछ मुझ पर दया ना आई। रो राम राम करता हूँ, अब परवस्ती करो की बातों के ही धनी थे। यह कहते कहते वशव के पास से हटकर दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठे। एक क्षण के बाद फिर बोले, अब इस माया जाल को तोड़ दूंगा। बहुत दिन इसने मुझे उंगलियों पर नचाया, अब मैं इसे नचाऊंगा। तुम दोनों चल दिए, बहुत अच्छा हुआ, मुझे माया जाल से छुड़ा दिया। इस माया के कारण कितने पाप किए, कितने झूठ बोले, कितनों का गला दबाया, कितने खेत काटे, अब सब पाप दोष का कारण मिट गया। वह मरी हुई माया सामने पड़ी है। कौन कहता है मेरा बेटा था? नहीं, मेरा दुश्मन था, मेरे गले का फंदा था, मेरे पैरों की बेड़ी था। फंदा छूट गया, बेड़ी कट गई। लाओ उस घर में आग लगा दो, अब सब कुछ भस्म कर दो। बल्लाज खड़ा आंसू क्या बहाता है, कहीं आग नहीं है? लाके लगा दे। सब लोग खड़े रो रहे थे, प्रेम शंकर भी करुणातुर हो गए। टपट सिंह के पास जाकर बोले, ठाकुर धीरज धरो, संसार का यह दस्तूर है, तुम्हारी यह दशा देखकर बेचारी स्त्रियां और भाई रो रहे हैं, उन्हें समझाओ। टपट सिंह ने प्रेम शंकर को उन्मत्त नेत्रों से देखा और व्यंग भाव से बोले, ओहो आप तो हमारे मालिक हैं, क्या जाफा वसूल करने आए हैं? उसी से लीजिए जो वहाँ धरती पर पड़ा होगा, वह आपकी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। गौस खां से कह दीजिए उसे पकड़ ले जाए, बाधे मारे मैं न बोलूंगा, मेरी खेती बाड़ी से घर द्वार से इस्तीफा है। कादिर खां ने कहा, भैया डपट दिल मजबूत करे, देखते हो घर घर यही आग लगी हुई, मेरे सिर भी तो वही विपत्ति पड़ी है। इस तरह दिल छोटा करने से काम न चलेगा, उठो उस दफन कपड़े की फिक्र करो, दोपहर हुआ जाता है। टपट सिंह को होश आ गया, होश के आंसू भी आए, रोकर बोले, दादा तुम्हारा सा कलेजा कहाँ से लाएं? किसी तरह धीरज नहीं होता, हाय दोनों के दोनों चल दिए। एक ही बुढ़ापे का सहारा न रहा, सामने वाला देखकर ऐसा जी चाहता है गले पर गणासा मार। दादा तुम जानते हो कि कितना सुशील लड़का था, अभी उस दिन मुगदर की जोड़ी के लिए हट कर रहा था, मैंने सैकड़ों गालियां दी, मारने उठा, बेचारे ने जमान तक नहीं लाई, खाने पानने को तरसता रह गया, उसकी कोई मुराद पूरी न हुई, न भर पेट खा सका न तन भर पहन सका, धिक्कार है मेरी जिंदगानी पर, अब यह घर नहीं देखा जाता, झपट अपना घर द्वार संभालो, मेरे भाग में ठोकर खाना लिखा हुआ है। भाई लोगों राम राम, मालिक को राम राम, सरकार को राम राम, अब यह अभागा देश से जाता है, कहीं सुनी माफ करना। यकाकर डपट सिंह उठकर कदम बढ़ाता हुआ एक तरफ चला। अब कई आदमियों ने उसे पकड़ना चाहा तो वह भागा, लोगों ने उसका पीछा किया पर कोई उसकी गर्द को भी न पहुंचा, जान पड़ता था वह हवा में उड़ा चला जाता है। लोगों के दम फूल गए, कोई यहाँ रहा कोई वहां गिरा, अकेले बल्लाज ने उसका पीछा न छोड़ा, यहाँ तक कि टपट सिंह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। बल्लाज दौड़कर उसकी छाती से लिपट गया और तब अपने अंगोछे से उसे हवा करने लगा। जब उसे होश आया तो हाथ पकड़े हुए घर लाया। ज्वाला सिंह की करुणा भी जागृत हो गई, जो प्रेम शंकर से बोले, बाबू साहब बड़ा शोकमय दृश्य है। प्रेम शंकर, कुछ न पूछिए, कलेजा मुंह को आया जाता है। कोई आदमी बांस काटने लगे लेकिन तीसरे पहर तक लाश न उठी। प्रेम शंकर ने कादिर से पूछा, देर क्यों हो रही है? कादिर, हजूर क्या कहें, घर में रुपए नहीं, बेचारा चपट रुपए के लिए इधर उधर दौड़ रहा है लेकिन कहीं नहीं मिलते, इसकी जो दशा है सरकार हम ही जानते हैं। जाफा लगान के मुकदमे ने पहले ही से हाड़ी तवा गिरो रखवा दिया था, इस बीमारी ने रही से कसर भी पूरी कर दी, अब किसी के घर में कुछ नहीं रहा। प्रेमशंकर ने ठंडी सांस लेकर ज्वाला सिंह से कहा, देखिए आपने इनकी हालत, घर में कौड़ी कफन को नहीं। ज्वाला सिंह, मुझे अफसेस आता है कि इनसे पिछले साल मुचलका क्यों लिया, मैं अब तक न जानता था कि इनकी दशा इतनी हीन है। प्रेम, मुझे खेद है कि मकान से कुछ रुपए लेकर न चला। ज्वाला, रुपए मेरे पास है पर मुझे देते हुए संकोच होता है, शायद इन्हें बुरा लगे, आप लेकर दे दें तो अच्छा हो। प्रेमशंकर ने 20 का नोट ले लिया और कादिर खां को चुपके से दे दिया। एक आदमी तुरंत कफन लेने दौड़ा, लाश उठाने की तैयारी होने लगी, स्त्रियों में फिर को आराम मचा। जब तक शव घर में रहता है घर वालों को कदाचित यह आशा लगी रहती है कि उसका घर तो उठना पार्थिव वियोग का अंत है, वह आशा के अंतिम सूत्र को जोड़े देता है। तीसरे पहर लाश उठी, सारे गांव में पुरुष साथ चले। वाली कादिर खां ने कंधा दिया। ज्वाला सिंह को सरकारी काम था, वह लौट पड़े, लेकिन प्रेम शंकर ने दो चार दिन वहाँ रहने का निश्चय किया।